ओम शांति। बाबा हमें सर्वगुण संपन्न बना रहे हैं, तो सभी गुणों में एक गुण है सत्यता। सत्यता के लिए कहेंगे कि एक महान बनाने वाला गुण है। शिव बाबा सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सतगुरु हैं। और भी बाप टीचर गुरु हैं, लेकिन उनको हम सत बाप, सत टीचर, सतगुरु नहीं कहते। सत शब्द के दो अर्थ होते हैं, सत माना सत्य और दूसरा सत माना अविनाशी। शिव बाबा सत्यम शिवम सुंदरम है, और इसीलिए कहते हैं ईश्वर सत्य है। वो हमें सत्य ज्ञान देते हैं, उस सत्य ज्ञान से ही सतयुग की स्थापना होती है और हम सत्य नारायण बनते हैं, यानी सत्य देवता बनते हैं। सत्य के लिए कहा जाता है सच तो बिठो नच। जो सच्चाई वाला होता है वो सदा हर्षित होता है, क्योंकि अगर सच्चे हैं तो दिल साफ है और उसके कारण वो शक्तिशाली होते हैं। सामना करने की वो शक्ति होती है उनके अंदर, तो वो कभी भी घबराएगा नहीं, कभी भी मूंझेगा नहीं। कहते हैं कि सत्य की नाव हिलती है, डुलती है, लेकिन डूबती नहीं है। तो सत्य के मार्ग पर चलने पर कठिनाइयां आती हैं, मुश्किलें आती हैं जरूर, क्योंकि कलयुगी दुनिया है और कलयुगी दुनिया झूठ की दुनिया है, जिसके लिए कहते ही हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो ऐसे में जब हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो विघ्न आते हैं, विरोध भी होता है, लेकिन हिम्मत रखते हैं हम तो बाबा की मदद हमें मिलती है। और कहते हैं कि अंतिम विजय सत्य की ही है, और इसीलिए सत्यमेव जयते कहा जाता है। सत्य के लिए कहा कि उसे सिद्ध नहीं करना पड़ता है, सत्य को स्वयं सिद्ध होने की शक्ति है। और अगर हम सत्य को सिद्ध करते हैं तो वो फिर जिद हो जाती है। तो सच्चाई सफाई जब हम कहते हैं तो वो है स्वयं के प्रति, बाबा के प्रति, और जो हम संबंध संपर्क में आते हैं, व्यवहार में आते हैं, उसमें है सच्चाई सफाई। जो हम कार्य करते हैं उसमें सच्चाई सफाई। तो स्वयं के प्रति सच्चाई है अपने सत्य स्वरूप में स्थित होना। जो आत्मा का आदि अनादि सतो प्रधान स्वरूप है, उस स्वरूप में रहना, वो सत्यता है। लेकिन अगर हम देह अभिमान में हैं और संग दोष में आ जाते हैं उसके कारण, यानी माया के संग दोष में आ जाते हैं, तो हम सच्चाई से यानी अपनी सत्यता से हम दूर हो गए। जो अपने आदि अनादि रियल फॉर्म में होते हैं, उनके चेहरे पर रूहानियत होती है, उनके चेहरे पर वो अलौकिकता दिखाई देती है, क्योंकि रूह का सत्य स्वरूप रूहानियत का अनुभव कराने वाला है। फिर दूसरा है शिव बाबा जो हैं, जैसे हैं, उनको उसी रूप में जानना, मानना और याद करना। तो बाबा के सत्य स्वरूप की स्मृति के साथ साथ ये धारणा, एक बाप दूसरा ना कोई, ये बाबा के साथ हमारी सच्चाई है। और जब हम इस धारणा में होते हैं तो फिर हमारे हर कर्म से बाबा के चरित्र अनुभव होते हैं, हमारे जो बोल होते हैं वो भी प्राप्ति का अनुभव कराने वाले होते हैं। जैसे सत वचन कहते हैं, यानी जो बोल हैं वो आत्माओं को सुख देते हैं। जैसे हम सुनते हैं कि बाबा अपने बच्चों के प्रति जो भी कहते थे, ब्रह्मा बाबा, वो उनके लिए वरदान हो गए, या हमारी दादियां भी जो भी शब्द बोलती हैं वो उनके वरदानी बोल होते हैं, तो हमारे भी बोल समर्थ तब होंगे जब हमारी ये धारणा होगी। और ऐसे ही जो संग होगा ऐसी आत्माओं का, वो पारस की तरह काम करेगा। जैसे पारस के लिए कहते हैं कि वो लोहे को भी सोना बना देता है, तो यानी ऐसी आत्माएं, उनके संग में जो भी आएंगे वो आत्माएं भी असमर्थ से समर्थ हो जाएंगे, उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। और ऐसी आत्माओं को बाबा से सर्व प्राप्ति का अनुभव होने के कारण आकर्षण नहीं होगी, व्यक्ति वस्तु वैभव की आकर्षण। जैसे कहते हैं कि जो रॉयल लोग होते हैं उनकी आंख कहीं नहीं डूबती है, क्योंकि वो भरपूर होते हैं। तो भरपूर होने का अर्थ है, जैसे कहते हैं कि पेट भरा हुआ है, अगर हमारा पेट भरा हुआ है और फिर कोई हमारे सामने भोजन रख दे तो हम नहीं खाएंगे, क्योंकि तृप्त है। तो ऐसे ही सर्व प्राप्ति संपन्न अनुभव करते हैं तो अपने आप ही कहीं आकर्षण हमारी नहीं होती है। और जब हम व्यवहार में आते हैं तो व्यवहार में जैसा अंदर है वैसा ही बाहर हमारा व्यवहार हो, या हमारी कथनी करनी एक हो। कई बार देखने में आता है कि व्यवहार में सच्चाई सफाई नहीं होती। जो हम किसी के सामने व्यवहार करते हैं, अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, लेकिन जैसे ही दूसरों से संपर्क में आते हैं तो उन्हीं के बारे में फिर उनकी बुराई हम करने लगते हैं। चार लोगों को उनके बारे में कुछ सुना देंगे और वो फिर उन तक भी पहुंचता है, या किसी भी प्रकार की कोई हेरा फेरी करते हैं, या कोई छल कपट करते हैं, धोखा करते हैं आपसी व्यवहार में, तो उसको हम सच्चाई सफाई नहीं कहेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि कोई गलती हो गई और मानो वो गलती बड़ों के सामने ध्यान पर आ गई, जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं, तो फिर अगर सच्चाई नहीं है तो उस गलती को छिपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर वो गलती सामने आती है, मान ली जाती है, तो हो सकता है कि मेरी ही कमजोरी मानी जाए और उससे कहीं मेरा नाम कम ना हो जाए, कहीं हमारा नाम खराब ना हो जाए। तो फिर उसको कई बार सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा चतुराई से झूठ का भी सहारा लेना पड़े तो वो सहारा लेकर के भी बात को बदल देते हैं, और दूसरों पर भी दोष डाल सकते हैं कि ये मेरा नहीं, इनका काम है या इन्होंने ऐसा किया है। तो यदि ऐसा हम करते हैं तो बाबा कई बार कहते हैं कि बाबा भी ऐसे बच्चों को देखकर मुस्कुराते हैं, क्योंकि हो भी जाता है, समझते हैं बड़ों को क्या पता चलता है, तो उनके सामने मानो हमारी जीत हो गई, जैसा हमने सोचा वैसे ही हमें प्राप्ति हो गई कि हमने अल्पकाल के लिए अपने नाम को बचा लिया, अपना मान रख लिया। लेकिन बाबा कहता है इस जीत में हार है, क्योंकि अल्पकाल की जीत हो गई, लेकिन जो 21 जन्मों की प्राप्ति होनी थी उसमें हार हुई। बाबा के जो दिल तख्त नशीन होना चाहिए वो दिल तख्त नशीन से भी नीचे आ गए, क्योंकि बाबा तो सच्चे दिल पर राजी होता है। ऐसे ही बाबा के साथ भी हमें सच्चे रहना है। बाबा हमेशा कहता है कि यदि कोई गलती हो जाती है, श्रीमत के विरुद्ध हमसे कर्म हो जाता है, तो हम अपना चार्ट बाबा को दें। और जब हम बाबा को चार्ट देते हैं सच्चाई से, तो बाबा कहता है आधा वहीं माफ हो जाता है, और जो आधा रहा है उसके लिए बाबा हमें शक्ति देता है। कई बार सोचते हैं कि बाबा तो जानता ही है ना, लेकिन बाबा कहते हैं ये सुनाने की विधि रखी हुई है ताकि रियलाइजेशन हो। और इसीलिए कोई भी श्रीमत के विरुद्ध अगर कोई कर्म हमसे हुआ है तो सच्चाई सफाई से हमें उसे बाबा के सामने रखना है। सच्चे दिल पर साहब राजी हैं, तो जो सच्चाई सफाई वाले हैं वो बाबा के दिल तख्त नशीन तो होते ही हैं, लेकिन साथ साथ में वो दाता विधाता वरदाता के रूप में बाबा के वरदानों का अनुभव करते हैं। तन मन धन संबंध, ये चारों ही प्रकार के भाग्य उन्हें अनुभव होते हैं। वरदाता अगर राजी है, भगवान अगर राजी है, तो वो आत्माएं सर्व भाग्यवान होंगी। तन का भाग्य है कि ऐसी आत्माएं सदा तन से, माना तन से स्वस्थ होने का मतलब ऐसा नहीं कि तन का हिसाब किताब नहीं आएगा, लेकिन आत्मा स्वस्थ होने के कारण तन स्वस्थ अनुभव करेंगे। तन कभी भी प्राप्तियों के या पुरुषार्थ के मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। और अगर तन का हिसाब किताब आता भी है तो वो बीमारी को चलाएगा, चला लेगा, यानी उसके दुख को अनुभव नहीं करेगा, यानी कर्म भोग को वो सूली से कांटा अनुभव करेगा और सहज रीति से पार हो जाएगा। फिर मन का भाग्य है कि मन सदा ही हर्षित होगा, मन सदा ही मौज में होगा, क्योंकि सर्व प्राप्ति स्वरूप है, तो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति होगी। कोई व्यक्ति वस्तु की तरफ मन नहीं लगा होने के कारण मन मनाभाव मन सहज हो जाता है। धन का भी भाग्य होगा कि धन में, जैसे ज्ञान धन तो हमें मिला ही है, लेकिन जीवन में स्थूल धन का भी महत्व होता है। तो बाबा कहता है जो ब्राह्मण आत्माएं हैं उनको आराम से रहने खाने के लिए, जीवन जीने के लिए जितने धन की आवश्यकता है या जो आवश्यकताएं हैं वो उनकी सहज पूरी होंगी। ब्राह्मण जीवन में करोड़पति हो जाएंगे ऐसा बाबा नहीं करेगा, लेकिन आवश्यकताएं पूरी होंगी। और अगर सेवा के लिए भी धन की आवश्यकता है, तो सेवा के लिए भी अगर सच्चा दिल है तो फिर बाबा किसी ना किसी को निमित्त बना देता है। कैसे ना कैसे वो धन उनके पास आता है और वो सेवा में सफल करते हैं। लेकिन सच्चे सेवाधारी वो हैं जो लगन से बाबा की सेवा करते हैं, जो निस्वार्थ भाव से या निमित्त निर्माण भाव से बाबा की सेवा करते हैं, तो बाबा मदद करता है। लेकिन एक होते हैं दिखावे के सेवाधारी या स्वार्थ से सेवा करते हैं, ड्यूटी प्रमाण सेवा करते हैं, या थोड़ा बहुत नाम मान शान की इच्छा रख करके सेवा करते हैं। तो बाबा कहता है ऐसे सेवाधारी या दिमाग से सेवा करने वाले सेवाधारी, वैरायटी सेवाधारी हैं, हम सब सेवा करते हैं लेकिन नंबर वार हैं। तो दिमाग तेज होता है, दिमाग विशाल है, उस आधार पर ज्ञान सुनाते हैं या जो भी सेवा करते हैं, तो वो सेवा करते हैं लेकिन पॉइंट सुना लेते हैं, लेकिन पॉइंट स्वरूप में स्थित हो जाने की शक्ति आत्मा में नहीं होती, वो आत्माओं की लगन बाबा से लग जाए वो शक्ति नहीं होती है। ऐसे ही जन का भाग्य, तो जो जन यानी जो संबंध संपर्क में आत्माएं हैं उसमें 95% आत्माएं जो हैं वो स्नेही सहयोगी होंगी, 5% के साथ हमारा हिसाब किताब होता है, तो 5% वो हिसाब किताब हम शुभ भावना शुभ कामना से चुकतु करते रहेंगे। लेकिन संबंध संपर्क में आते हुए, जन के संबंध संपर्क में, उनके प्रति कभी प्रश्नचित नहीं होंगे कि ऐसा क्यों करते हैं, ये ऐसा है, क्योंकि पता है कि वैरायटी आत्माएं हैं और वैरायटी ही सबके संस्कार हैं, वैरायटी ही रोल हैं, और त्रिकालदर्शी होने के कारण, ड्रामा के राज को समझने के कारण, आत्माओं के संबंध संपर्क में भी, कैसी भी आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हैं तो भी प्रसन्नचित रहेंगे और उनके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रहेगी और उनका भी हमें वो स्नेह सहयोग प्राप्त होता रहेगा। फिर सत्यता में सभ्यता भी चाहिए। जैसे हम ज्ञान सुनाते हैं तो बाबा कई बार कहते हैं कि हमारा सत्य ज्ञान है, तो हमारे अथॉरिटी के बोल और निर्भयता के बोल होने चाहिए। सत्य ज्ञान है तो ऐसा नहीं कि हम दूसरी आत्माओं के ज्ञान से, क्योंकि अगर कोई भी दूसरे क्षेत्र में भी अथॉरिटी वाले हैं, उनके भी अपने ज्ञान की अथॉरिटी होती है, तो कई बार हम उनसे प्रभावित हो जाते हैं और फिर उसके अनुसार अपने ज्ञान को थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं कि उनको क्या अच्छा लगेगा उस अनुसार हम सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं नहीं, सत्य ज्ञान को स्पष्ट करना है तभी बाबा को हम प्रत्यक्ष कर सकेंगे, पर अथॉरिटी के बोल हों जो स्नेह और निर्माणता लिए हुए हों। स्नेह और निर्माणता होगी तो उन्हें ऐसा लगेगा कि ये जैसे मेरे लिए हैं, जैसे मुरली हम सुनते हैं, तो बाबा के बोल अथॉरिटी के बोल हैं लेकिन उनमें स्नेह भरा हुआ है। तो बाबा कैसे भी शब्द बोलते हैं, कैसी भी शिक्षाएं हमें देते हैं, लेकिन हमें महसूस होता है कि ये हमारे कल्याण के लिए बाबा ने कहा। कभी भी हमें अपमान महसूस नहीं होता है या उसमें कोई अभिमान की छलक नहीं दिखाई देती है। तो ऐसे ही हम भी जब सत्य ज्ञान देते हैं तब हमारा ज्ञान देने का स्वरूप ये हो, और ऐसे नहीं कि हम तो सच बोल रहे हैं तो हम थोड़ा जोश में आ जाएं। कई बार जो सच बोलता है वो थोड़ा सा जोश में आ जाता है कि मैं तो सच बोल रहा हूँ, और गुस्से में भी आ जाते हैं कई बार कि सत्य बोल रहे हैं। लेकिन संस्कृत में कहा गया, सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात ना बुरियात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो लेकिन प्रिय लगने वाला सत्य बोलो, अप्रिय लगने वाला सत्य नहीं बोलो। तो सत्यता की सभ्यता ये है कि हम सत्य बोल रहे हैं लेकिन फिर भी उसको मधुरता से बोल रहे हैं जो आत्मा को स्वीकार हो। तो सत्यता के लिए हम ये भी कह सकते हैं, कई बार ऐसी स्थितियां व्यवहार में आती हैं, मानो बिजनेस में है, कारोबार में है, तो कुछ लोग कहते हैं कि हम कारोबार में तो झूठ बोलना ही पड़ता है हमको, क्योंकि अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो हमारा घर परिवार कैसे चलेगा। तो यहाँ भी बिजनेस एथिक्स होते हैं, और अगर उस अनुसार हम अपना बिजनेस करते हैं या कारोबार करते हैं तो हो सकता है कि हमें थोड़ा कम प्रॉफिट होगा, जितना हम चाहते हैं उतना प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन जो ईमानदारी से कमाया हुआ धन है वो धन शक्तिशाली होता है, उस धन में ताकत होती है, वो धन बरकत लाता है, जीवन में संतोष और सुख देता है। लेकिन जो गलत तरीके से कमाया गया धन है, यानी थोड़ा भी धन के लालच में हम गलत तरीके अपना करके धन कमा लेते हैं, ऐसा धन टेंशन ही पैदा करता है। और किसी ना किसी रूप में दुख अशांति ले आता है। कई बार ब्रह्मा बाबा से भी कुछ लोग इस बारे में ऐसे सवाल पूछते थे, क्योंकि कई बिजनेस या कई कार्य ऐसे होते हैं कि झूठ बोलना ही पड़ता है उसके अंदर। जैसे वकालत है, तो वकालत एक ऐसा कार्य है कि जिसमें वकील को कहीं ना कहीं अपने क्लाइंट को जिताने के लिए झूठ का सहारा लेना ही पड़ता है, और भी कुछ कुछ ऐसे कार्य होते हैं। तो ऐसा कई बार हुआ कि बाबा के उन बच्चों ने जिन्हें बाबा पर पूरा निश्चय था, वो सत्य ज्ञान समझ में आ गया, तो उन्होंने अपने उस कार्य को परिवर्तन भी कर लिया कि हम थोड़ा कम कमा लेंगे लेकिन झूठ के आधार पर हम धन नहीं कमाएंगे। कई बार लोग कल्याण के लिए भी झूठ का प्रयोग करते हैं। जैसे हम एक गाय की कहानी सुनते हैं कि एक बार गाय भाग रही थी और उसके पीछे कसाई आ रहा था। एक व्यक्ति ने देखा और समझ गया कि ये कसाई गाय को काटना चाहता है, तो कसाई ने उससे पूछा, गाय उधर से गुजरी, कि तुमने देखा गाय कहाँ गई? तो उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम, हालांकि उसने देखा था, लेकिन उसकी भावना थी कि वो गाय को बचाया जाए। तो अगर कल्याण के लिए झूठ बोला जाता है तो ऐसा झूठ पाप नहीं होता, ऐसे बोलते हैं झूठ बोलना पाप है। तो कई बार ब्राह्मण बनने के बाद भी ऐसी स्थितियां हमारे साथ पैदा होती है, मानो घर में सब ज्ञान में नहीं चलते, हमारा सेंटर जाना उनको पसंद नहीं, और कोई बहन है मानो वो सेंटर जाती है, वहां उनको शांति मिलती है, शक्ति मिलती है, जाना चाहती है, तो वो घर में ये कहकर जाती है कि मैं बाजार जा रही हूँ, तो वो बाजार का काम भी करती है, लेकिन बाजार से वापस आने के पहले वो सेंटर भी जाती है। तो हम इसको युक्ति कहेंगे कि अपने कल्याण के लिए हमने उस युक्ति का आधार लिया। लेकिन अगर हम स्वार्थ के लिए झूठ बोलते हैं, अपने ही फायदे के लिए अगर हम झूठ का सहारा लेते हैं, तो फिर वो झूठ पाप हो जाता है। तो सत्यता को जितना हम जीवन में अपनाते हैं, वो पवित्रता का ही एक अंश है। हम कहेंगे प्यूरिटी और रियलिटी दोनों का संबंध है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो बाबा कहता है ये पवित्रता और सत्यता, ये दो गुण बाप की प्रत्यक्षता करने वाले हैं। तो जितना हम सत्यता पर चलते हैं, बाबा के समीप होते हैं, बाबा के दिल तख्त नशीन होते हैं, और उसके साथ साथ ही हम बाबा के ज्ञान को इस विश्व में प्रत्यक्ष भी कर पाएंगे। ओम शांति।
अपना